अब आगे सूरत के एंड पे बात हो रही है शायरी बमुकाबला वही इलाही पे। ये रब्बुल आलमीन की नाजिल करदा चीज है, इसे लेकर तेरे दिल पर अमानत दार रूह उतरी है। कुरान का महल क्या है? नबी का दिल। कितनी महफूज चीज में अल्लाह ने इस कुरान को डाला। आप देखिए जितनी कीमती चीज होती है उतने मजबूत बर्तन में डालते हैं, तो नबी के दिल को शैतानों से पाक करा, फिर उसके अंदर कुरान को नाजिल किया ताकि तो इन लोगों में शामिल हो जो खुदा की तरफ खलके खुदा को मुतनब्बिह करने वाले हैं। साफ साफ अरबी जुबान में और अगले लोगों की किताबों में भी ये मौजूद है। क्या इन अहले मक्का के लिए ये कोई निशानी नहीं कि इसे उलमाए बनी इसराइल जानते हैं? लेकिन इनकी हट धर्मी का तो ये हाल है, अगर हम इसे किसी अजमी पर नाजिल कर देते और ये फसीह अरबी जुबान इनको पढ़कर सुनाता तब भी ये मान कर न देते। इस तरह हमने इस जिक्र को मुजरिमों के दिलों में गुजारा है, वो इस पर ईमान नहीं लाते जब तक कि अजाब अलीम को ना देख लें। फिर जब वो बेखबरी में इन पर आ पड़ता है, इस वक्त वो कहते हैं क्या अब हमें कुछ मोहलत मिल सकती है? तो क्या ये लोग हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? तुमने कुछ गौर किया? अगर हम इन्हें बरसों तक ऐश करने की मोहलत भी दे दें और फिर वही चीज इन पर आ जाए जिससे इनको डराया जाता है, तो वो दुनिया का सामान जो इनको मिला है इनके किस काम आएगा? 3 सेकंड गौर करें। खूब गुनाह करे बंदा, खूब नाफरमानियां करें, व्हाट नेक्स्ट? 1 साल, 2 साल, 3 साल, अल्लाह कहते हैं जो बला है वो टलनी नहीं है। तो ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी जिंदगियों को अपनी रजा वाली बना दे। देखो हमने कभी किसी बस्ती को इसके बगैर हलाक नहीं किया कि इसके लिए खबरदार करने वाले हक के नसीहत अदा करने को मौजूद थे और हम जालिम ना थे। इस किताब मुबीन को शयातीन लेकर नहीं उतरे और ना ये काम इनको सचता है और ना वो ऐसा ही कर सकते हैं, वो तो इसकी समात से भी दूर रखे जाते हैं। आप क्या गवाही देते हैं? तकरीबन 19 पारे पढ़ने के बाद आपको ये कलाम पढ़ के लगता है ये शैतानों ने नाजिल किया? शैतान इतनी मुश्किल बातें करवाएगा आपसे मुझसे, और शैतान हराम करवाएगा शराब को? कैसी भोंडी बात करते थे। करो क्या पस है नबी, अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को ना पुकारो वरना तुम भी सजा पाने वालों में हो जाओगे। अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराओ। हाईलाइट करें, ये है वो वही जिसके बाद नबी सल्लम ने अपने करीबी रिश्तेदारों को दीन की दावत दी थी, खाने पर बुलाया, और फिर आपके चचाओं में से किसी ने आपके साथ बदतमीजी भी की। इस पे अमल आप और मैं भी लिखिए। करीब तरीन में से जो भी आपके रेंज में उसको दावत दीजिए, और ईमान लाने वालों में से जो लोग तुम्हारी पैरवी इख्तियार करें इनके साथ तवाज़ो से पेश आओ। लेकिन अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करें तो इनसे कह दो कि जो कुछ तुम करते हो मैं इससे बरीउज़िमा हूं, और इस जबरदस्त और रहीम पर तवक्कुल करो जो तुम्हें इस वक्त देख रहा होता है जब तुम उठते हो, और सजदा गुजार लोगों में तुम्हारी नकलो हरकत पर निगाह रखता है, वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है, यानी हर वक्त तुम अल्लाह की निगाहों में हो। अब सूरत के नाम की निस्बत से आयात है। हल उनब्बियुकुम अला मन तनज़्ज़ुलु शयातीन। लोगो क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शयातीन किस पर उतरते हैं? वो हर जालसाज बदकार पर उतरा करते हैं, सुनी सुनाई बातें कानों में फूंकते हैं और इनमें से अक्सर झूठे होते हैं। नबी सल्लम की सगी चची जो अबू लहब की बीवी थी वो आपको कहा करती थी, बिल्कुल हमसाई थी, उम्मे जमील उसका नाम था, तो वो आपके पास जिब्राइल का आना और वही का नाजिल होना इसको कहती थी तेरा शैतान नहीं आया आज तेरे पास, क्या तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया? उसके जवाब में ये बातें हैं। रहे शोरा, तो इनके पीछे बहके हुए लोग चला करते हैं, क्या तुम देखते नहीं हो कि वो हर वादी में भटकते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं? यानी अक्सर शायरों के कौलो फेल में तजाद होता है। कभी कोई आज तक आसमान से सितारे तोड़ के लाया? कोई दूध की नहर खोदता है? तो शायरी में मुबालगा बहुत होता है। अपनी जगह शायरी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन शायर का कलाम अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है तो अच्छा है, वरना बुरा है। आज का हमारा टाइम वेस्टर भी यही है, सिर्फ टाइम पास करने के लिए बेहुदा शायरी पढ़ना, बेकार चीज़ों को सुनना देखना। आप देखिए गाना भी तो शायरी है, उसमें तो और भी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, तो ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है कि हम इसमें बैठकर घंटों गज़लें पढ़ें, इश्किया बातें, आँखों की बातें, शराब की बातें। शायरी का शौक़ है अच्छे शायरों को सुनें, अच्छे शायरों को पढ़ें जो कुरान और सुन्नत की बातें आपको मज़ीद अच्छी तरह बता सकें। بجز ان کے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ کو کثرت سے یاد کیا، جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کیا ایم انقلبی انقلبون، کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ دنیا میں نبی کے ساتھ منہ ماری کر لی ہے، آخر کچھ عرصے میں ہی تمہیں اپنا انجام نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قرآن کو، اس وحی کو سمجھنے والا ہمیں بنائے، اور ہمارے دلوں میں کوئی ایسی بات نہ ڈال دے کہ جس کو آپ اور میں اپنی زندگی میں پیش نہیں کر سکتے. اور بات ساری یہی ہے کہ جتنا زیادہ ہماری زندگی میں اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کے کلام کو ہم سنتے سمجھتے ہیں، اتنا ہی انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہیں گے. آئیے سورۃ نمل شروع کرتے ہیں. سورۃ نمل کیا ہے؟ نمل کہتے ہیں چیمٹی کو. پہلے کیا پڑھا تھا؟ نحل. کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. وہاں ہم سورت نحل میں شہد کی مکھی سے امپریس ہوئے تھے، یا انشاءاللہ آپ نمل سے ہوں گے اللہ نے چاہا تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ آیتیں ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. اللہ ہمیں یہ تینوں کام کرنے والا بنا دے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے تو ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوش نما کر دیا، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. اے نبی، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. آپ میں بھی تو اللہ کی طرف سے ہی پا رہے ہیں. اس پہ اللہ کا دل کے شعور کے ساتھ شکر ادا کیجئے. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی، میں بھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. وہاں جو پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا رب. اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. سورۃ طہٰ یاد آ رہی ہے. اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی. جوں ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، الا یہ کہ کسی نے کوئی قصور کیا ہو. کیا پتہ چلا، گناہ ہوں گے نا تو ڈر لگے گا زیادہ، گناہ نہ ہو تو اللہ کے حکم سے رحمت کی امید ہوگی. پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دو نشانیاں نو نشانیوں میں سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے. وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں، مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. آپ نے نوٹ کیا، دل قائل تھے، مائل نہیں تھے. یاد رکھیے، قائل ہونے سے زیادہ مائل ہونے کی دعا کیجئے. دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. اب یہاں تقابل ہے، سمجھیے گا. فرعون کی بات ہے، ظلم اور بربریت. اب ایک نیک صالح نبی کو نبوت ملتی ہے تو وہ انسانیت کے نفع کے کام کیسے کرتا ہے؟ اب یہاں اور اگلی چند صورتوں میں حضرت داؤد اور سلیمان کا کثرت سے ذکر آئے گا. ہمارے لیے اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کے عروج کے خواب دیکھیں کہ جب دنیا میں ایسے لیڈر آئیں گے جو قرآن سے بھی جڑے ہوں گے تو دنیا کو کتنا نفع دیں گے. ہم نے داؤد علیہ السلام کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی. اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان ہوئے اور انہوں نے کہا لوگوں میں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. سلیمان کے لیے جن اور انسان اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. یہاں سے آپ کو ایک اچھے حکمران کی خوبیاں دکھیں گی. کتنا جاگ رہا تھا اور اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں دی کہ پرندوں کی بولیاں آتی تھیں، کوئی فخر نہیں، کوئی تکبر نہیں. اور جنوں اور انسانوں کے اوپر حکومت تھی حضرت سلیمان کی، اور کیسے ضبط میں رکھے جاتے تھے، یعنی ڈسپلن تھے. अल्लाह से दुआ करते हैं कि उम्मत मुस्लिमा भी डिसिप्लिन हो जाए। अब चींटियों की वो बातें कैसे सुनते थे, उन्होंने क्या बातें की, इसको इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। यहाँ पे रुकते हैं। अल्लाह ताला ने जो पढ़वाया उस पर अमल की तौफीक दे, इसको हमारे हक़ में हुज्जत बनाए, हमारे खिलाफ हुज्जत भी ना बनाए। आज की आयत तदब्बर सूरह फुरकान आयत 30, जिसमें हमने पढ़ा वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, कि ये मेरी वो कौम है जिसने कुरान को नज़रअंदाज कर रखा था। और सबसे खूबसूरत आयत जिसको आज हमने बहुत इंजॉय किया सूरह फुरकान 52, फला तुतील काफरीन वजाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा। इस नेमत के शुक्रिया में इन काफरों की बात ना मानिए बल्कि कुरान से इनका मुकाबला कीजिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दे इस बात की। आज की हदीस सही बुखारी की रिवायत है अबू सईद अल-खुदरी से, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कुछ लोग तुम में से ऐसे पैदा होंगे कि तुम अपनी नमाजों को इनकी नमाजों के मुकाबिल और अपने रोज़ों को इनके रोज़ों के मुकाबिल और अपने दूसरे नेक आमाल इनके नेक आमाल के मुताबिक हकीर जानोगे, यानी बहुत नमाजी और रोज़ेदार होंगे। कुरान शरीफ पढ़ेंगे मगर ज़ुबान से, अस्तग़फिरुल्लाह, यानी ज़ुबान की नोक पर कुरान होगा, कुरान पाक इनके गलों से नीचे नहीं उतरेगा। ये आप कहते हैं कि मखारिज में आखिरी मखरज यहाँ होता है, ये इससे नीचे नहीं, यानी अमल में नहीं ढलेगा, बस गा गा के पढ़ेंगे, दिल पर कुछ असर नहीं करेगा, वो दीन से इस तरह बाहर हो जाएंगे जैसे तीर शिकार के जानवर में से पार निकल जाता है, जैसे कि कोई किसी साफ लकड़ी को देखे तो साफ पर को देखे तो साफ फर्क को देखे तो शक होती है कि कुछ लगाया नहीं। हदीस क्यों चूज़ की गई है आज, जाहिद हूँ बिही जिहादन कबीरा। कुरान को पढ़ना नहीं है, फैलाना है, पढ़ के समझना है, समझ के अमल करना है, अमल करके दूसरों से शेयर करना है और शेयर करने के रास्ते में जो रुकावटें उनको दूर करना है। और आज की दुआएं सूरह फुरकान के आखिरी रुकू की इबादुर्रहमान की दुआओं में से आयत 65-66, रब्बना सरिफन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्ना सात मुस्तकर्रम व मुकामा। फिर उसके बाद अगली दुआ क्या है सूरत फुरकान की आयत 74, सब मिलके पढ़ें, मुझे पता है आप सबको आती है, रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अय्युनिम वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। वाकई अल्लाह से आज तो दुआ करें दिल से और इस दुआ को अपनी ज़ुबान पे रखें, कम से कम शऊर से कल तक मांगें कि अल्लाह हमारे बच्चों की तरफ से हमें कोई खुशी दिखा और हमारे शौहरों को भी और दुनिया की भी दिखा और दीन की भी दिखा। फिर सूरह शुरा की आयत 83-86 जो बड़ी प्यारी दुआ है, हर उस शख्स को पढ़नी चाहिए जिसको अल्लाह के काम करने का शौक़ है, रब्बी हबली हुक्मा वल हिकनी बिस्सालिहीन वजअली लिसान सिदकिन फिल आखिरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नति नईम। ए मेरे परवरदिगार, मुझको हिकमत अता फरमा और अपने क़ुर्ब में मुझको आला दर्जे के नेक लोगों में शामिल फरमा और मेरा जिक्र आइंदा आने वालों में जारी रख और मुझको जन्नत नईम का मुस्तहिक कर दे। टाइम मैनेजमेंट टिप, अपनी दोस्तों के साथ जब होती हूँ तो क्या मेरा ईमान बढ़ता है या डैश, जायजा लीजिए। अब क्या करें, सारी दोस्तें बदल लें? नहीं, दोस्तों को ठीक करें, जो दोस्तें बिगड़ी हुई हैं उनको ठीक कीजिए और जो अच्छे लोग हैं उनको दोस्त बनाइए। और आज का टाइम वेस्टर बेकार शायरी में वक्त ज़ाया ना करें, उसकी जगह बेहतर है कुरान की एक आयत पढ़ लें। बाद दफा सिर्फ नशीद ही सुनते रहते हैं, कभी कभी टेस्ट चेंज करने को सुन लें, कसरत से कुरान का आदि करें अपने कानों को। और काबिले तकलीद मिसाल इबादुर रहमान, अल्लाह ताला आपको मुझे सबको इबादुर रहमान में शामिल कर ले। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।